पृष्ठ संख्या 124। अंबेडकर की दृष्टि में हिंदुत्व। हिंदू धर्म दर्शन का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गहन अध्ययन किया है। तमाम तात्विक विषयों पर गंभीर चिंतन के बाद अपनी विवेचना प्रस्तुत की है। हिंदुत्व दर्शन पर संभवतः उनका संपूर्ण आलेख उपलब्ध नहीं हो सका, किंतु जितनी भी उपलब्ध सामग्री है, वह उनके समालोचक गहन दृष्टि को झलकाने के लिए पर्याप्त है। धर्म की निश्चित व्याख्याओं की विवेचना के बाद उनका मत है कि धर्म शब्द का एक शब्द में अर्थ नहीं किया जा सकता। धर्म थियोलॉजी शब्द से मिलता जुलता है, लेकिन थियोलॉजी की भी अपने अपने कार्यों के हिसाब से व्याख्या है। वे एक शब्द में नेचुरल थियोलॉजी कहते हैं, जिसका अर्थ ईश्वर अथवा सर्वशक्तिमान है। इस सिद्धांत के अनुसार एक ईश्वर की सत्ता अस्तित्व में है और वही प्रकृति अथवा ब्रह्मांड का जन्मदाता अथवा संचालक है। दो, प्रकृति की प्रत्येक गतिविधि को ईश्वर ही नियंत्रित करता है। तीन, ईश्वर अपने सार्वजनीन नैतिक सिद्धांतों द्वारा ही सदा सर्वदा संपूर्ण मानव मात्र पर राज्य करता है। उनकी मान्यता है कि धर्म एक ऐसी परिवर्तनीय शक्ति है जिसके माध्यम से मनुष्य को सामाजिक रस्सियों में बांधकर नैतिकता के सहारे जीवन जीने की राह दिखाई जाती है। यह एक आदर्श व्यवस्था है जिसके अनुसार प्राणी मात्र का जीवन मर्यादित किया जाता है। धर्म में कुछ आवश्यक अवयव हैं जिन्हें उसके अनावश्यक अवयवों से अलग कर पाना एक कठिन काम है। सकारात्मक धर्म के अवयव अनादि धर्मों से प्रस्फुटित नहीं होते हैं। बीच बीच में धर्मों के उदय के साथ कुछ खामोश तरीके से असंगत बातें भी उभरती हैं, जिन्हें धर्मों से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए धर्मों की शुचिता के लिए समय समय पर प्रख्यात धर्म पुरुष पैदा होते हैं, जिनके उपदेशों को ग्रहण कर धर्म की शुद्धता पुनः प्रवाहित होती रहती है। धर्म समाज की एक ऐसी प्रवाहमान धारा है जिसमें खामोश तरीके से गंदी और प्रयास के द्वारा अच्छी बातों का निरंतर प्रवेश होता रहता है। सशक्त धर्म की तीव्र धाराएं स्वतः गंदगी को साफ करती रहती हैं। हिंदुत्व भी जुडाइज्म, ईसाई और इस्लाम की ही तरह एक सकारात्मक धर्म है। यह अलिखित संविधान जैसा नहीं है। सर्वसत्ता संचालन की हिंदू व्यवस्था लिखित रूप में है, जो मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथों में देखी जा सकती है और जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन, संस्कार आदि संचालित होते हैं। इसे हिंदुओं का बाइबिल कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। वे धर्म के इतिहास को इंगित करते हुए कहते हैं कि एक जमाना था जब धर्म ने सब कुछ आत्मसात कर लिया था। मानव ज्ञान का संपूर्ण क्षेत्र, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो या ब्रह्मांड का सिद्धांत, सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि सभी धर्म के विषय थे। वनस्पति शास्त्र से लेकर जीव विज्ञान तक में धर्म की ही छाया मंडराती रहती थी। एक डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, कॉमा वॉल्यूम 3, कॉमा पृष्ठ संख्या 6। पृष्ठ संख्या 125। मानवीय विकार अथवा रोग ईश्वरी कोप दृष्टि से होता है, जिससे मुक्त होने के लिए तीर्थ यात्राएं अथवा पवित्र जलों से स्नान और भूत प्रेत से मुक्ति हेतु आराधना के नियम तक में धर्म प्रवेश कर गया था, किंतु समय समय पर चिंतकों ने मसलन डार्विन के विकासवादी सिद्धांत और कोपरनिकन क्रांति आदि ने धर्म के सार्वजनिन शक्ति को धूल धूसरित किया। विज्ञान ने अपने 400 वर्षों के संघर्ष से धर्म की व्यापक सत्ता को काफी हद तक कमजोर किया। धार्मिक क्षेत्र में क्रांति ने मानव सभ्यता को बहुत से आशीर्वाद दिए। इसने विचारों की आज़ादी को जन्म दिया। इसने मनुष्य को अंधविश्वासों पर विजय प्राप्त स्वयं चेता बनाने की कोशिश की। मानव ने इस व्यावहारिक क्रांति के जरिए अपनी निर्विघ्न यात्रा और स्वतंत्र चिंतन के भाव को जागृत किया। धार्मिक नर और नारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि धार्मिक जीवन ने अनावश्यक रूप से उनके प्रगति मार्ग को रोक रखा था। इस क्रांति ने प्रकृति पुरुष तथा मानव और ईश्वर के रिश्तों को बदल दिया। इससे मानव सभ्यता के नए आयाम खुले हैं जिनका स्वागत किया जाना चाहिए। धर्म के ऊपरी रूप में यज्ञ और आयोजनों के प्रावधान को मानकर चलना पड़ता है। जन्म और मृत्यु भी जादू टोने का शिकार होकर रह जाती है। प्रथम बच्चे का जन्म, विवाह, बीमारी, मृत्यु, संघर्ष सब कुछ दैनिक जीवन में कार्य के मूल रूप गायब होकर टोटका और जादू टोना ही मूल हो जाते हैं। जादू टोना टोटका का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर तर्कहीन समाज इन बातों को गठिया कर रखे रहता है। समाज में बड़े लोगों के पूजा भाव से ही ईश्वर की धारणा ने जोर पकड़ा होगा। ईश्वर की विचारधारा धर्म के साथ संयुक्त विचारधारा नहीं है। धर्म के साथ ईश्वर को जोड़ने का विचार समाज में कब आया इसे कह पाना कठिन है, किंतु धर्म के साथ नैतिकता का भाव शाश्वत है। सभ्य समाज में ईश्वर धर्म के आगे आता है और सभ्य समाज में नैतिकता को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त होती है। इसे ही अंबेडकर जी धर्म में क्रांति का नाम देते हैं। इस तरह धर्म के इतिहास की विवेचना करते समय उनका निष्कर्ष है कि प्राचीन समाज में मनुष्य और ईश्वर दोनों ने मिलकर धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक इकाई का गठन किया। ईश्वर और भक्तों ने मिलकर धर्म की सत्ता स्थापित की। आधुनिक समाज ने ईश्वर की सत्ता को हटाकर अपनी ही सत्ता स्थापित कर ली। प्राचीन समाज में ईश्वर को पिता का दर्जा प्राप्त था। आधुनिक समाज ने दैवी पितृ सत्ता को अस्वीकार कर प्राकृतिक पितृ सत्ता को अंगीकार कर लिया है। उनकी मान्यता है कि प्राचीनतम विश्व में राष्ट्र का बदलाव बिना धर्म परिवर्तन के साथ संभव नहीं था, अर्थात प्राचीन राष्ट्रवाद की कल्पना धर्म आधारित थी। सभी धर्म अपनी अपने राष्ट्रीयता के घेरे में कैद थे। प्राचीन मनुष्य को धर्म परिवर्तन और राष्ट्रीय परिवर्तन साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया थी, किंतु आधुनिक समाज में ऐसा संभव नहीं है। राष्ट्र और धर्म एक दूसरे से अलग निकलकर स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर लिए हैं और इसीलिए आधुनिक मनुष्य के लिए धर्म निजी आस्था की विषय वस्तु है। इसका राष्ट्रीयता से कुछ भी लेना देना नहीं है। धर्म में मानवीय ईश्वरीय संबंध हो, संस्कारों धर्म के बाह्य स्वरूपों में इतिहास के प्रवाह में मूलभूत परिवर्तनों की डॉक्टर अंबेडकर ने गंभीर विवेचना की है, जो उनके गहन चिंतन का परिचायक है। धर्म की विवेचना करने के साथ उन्होंने धर्म की पड़ताल की और उनकी मान्यता थी कि हिंदू दिमाग अपने धर्म की समीक्षा करने से कतराता है। पृष्ठ संख्या 126। वह हर पड़ताल के समय उत्तर देगा कि सभी धर्म अच्छे हैं या धर्म के लिए कोई महत्वपूर्ण बात कहने से भागेगा, किंतु हिंदू जीवन दर्शन में हर क्रिया धर्म से संचालित है। जीवन से मृत्यु तक संस्कारों से वांछित जीवन शैली में धार्मिक क्रियाएं फंसी हुई हैं। धर्म एक सामाजिक शक्ति भी है। जो लोग धर्म की महत्ता से इनकार करते हैं, वे नहीं समझते कि धर्म की ताकत व सत्ता काफी गहरी है। संपूर्ण मानव मात्र पर अधार्मिक सत्ता के प्रभाव से धर्म सत्ता विशेष प्रभावी है। धर्म की सत्ता की अनदेखी करना जीवन रेखा को नकारना है। उन्होंने सभी धर्म अच्छे हैं ऐसे विचार की धज्जियां उड़ाई और कहा कि धर्म बहुत समाज को ऊंचा भी उठाता है और बहुत समाज के पतन के कारणों में धर्म एक मूल मंत्र है। इसीलिए हिंदुओं को अपने धर्म की समीक्षा करने से नहीं कतराना चाहिए। उन्होंने न्याय की तीन धाराओं स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व के सिद्धांत की कसौटी पर हिंदुत्व को कसने की कोशिश की। उनका निष्कर्ष था कि जाति व्यवस्था के चलते हिंदू धर्म से समानता का सिद्धांत विलीन हो गया। वर्ण व्यवस्था जननी है, जातियां उसी से पैदा हुई हैं। वे मनु को जाति व्यवस्था का आविष्कारक नहीं मानते, बल्कि वे उसे संहिताबद्ध करने वालों में से हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा उसमें अति शूद्र का श्रेणीकरण समता के सिद्धांत का निषेध है। यह राज दरबार में इकट्ठा प्रजाजन का तात्कालिक वर्ग विभाजन नहीं है, अपितु समाज व्यवस्था का स्थायी गठन का सिद्धांत है। मनु ने असमता को स्थायी सिद्धांत बना दिया। मनु गुलामी की व्यवस्था को अंगीकार करते हैं, लेकिन यह गुलामी केवल शूद्रों तक स्थायी रूप से सीमित रहे। उच्च जाति के लोग शूद्रों के गुलाम नहीं हो सकते, चूंकि उन्हें प्रारंभिक जीवन में जाति आधारित जुर्मों को खुद भुगतना पड़ा था, इसीलिए जातिगत उत्पीड़न की तह में जाने की उन्होंने कोशिश की। उनकी मान्यता थी कि मनु अंतरजातीय विवाहों के खिलाफ थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अंतरजातीय विवाह संभव थे तो ब्राह्मण अपने नीचे की सभी जातियां क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्रों में विवाह का हकदार था। क्षत्रिय अपने नीचे शूद्र वैश्य में अंतरजातीय विवाह कर सकता था, वैश्य शूद्र और अति शूद्र में कर सकता था तथा शूद्र अति शूद्र में, लेकिन नीचे से ऊपर पहुंचने की कोशिश करने वाली जातियों को अंतरजातीय विवाहों पर पाबंदी थी। इसी तरह की पाबंदी ने जातियों को टूटने से रोका। यदि शूद्र भी किन्हीं परिस्थितियों में द्विज के साथ विवाह कर्म का अधिकारी होता अथवा उन्हें गुलाम बनाकर रखने का पात्र धर्मशास्त्रों के अनुसार होता, तो शायद जाति के बंधन पहले ही हट गए होते। कानून का शासन ही कानून के समक्ष समता के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। उन्होंने मनुस्मृति के अनेक छंदों को उद्धृत कर इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है। जुर्म के अनुसार दंड की प्रथा नहीं थी। जाति के अनुसार दंड का प्रावधान बदल जाता है। यदि अपराधी उच्च कुल का है और घोर अपराधी है, तो उसको सामान्य सजा दी जाएगी, लेकिन अपराधी शूद्र कुल का है तो घोर दंड का भागी होगा। उन्होंने इस आधार पर हिंदू धर्म के प्रति आक्रोश और उत्तेजना के वशीभूत होकर उसके विरुद्ध बगावत का आवाहन किया। एक, डॉक्टर अंबेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेज, कॉमा वॉल्यूम 3, कॉमा पृष्ठ संख्या 28 से 29। पृष्ठ संख्या 127। संस्कार और आश्रम की व्यवस्था के भी वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि मनु ने आश्रम व्यवस्था में शूद्रों को इससे वंचित रखा था। संस्कार और आश्रम व्यवस्था हिंदू धर्म में भेदभाव उत्पन्न करने वाली है, और इस आलोचना का उनका आधार मनुस्मृति में वर्णित स्थापनाएं हैं। मनु कहते हैं, संन्यास ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, जो केवल उच्च जातियों का विशेषाधिकार है। संस्कार और संन्यास का रास्ता शूद्रों के लिए नहीं खुला है, वे विषम समाज के संस्थापक थे। यदि हम ईश्वर की निगाह में एक हैं, तो धरती पर हम अनेक क्यों हैं? यह अंबेडकर का यक्ष प्रश्न है। इस हिंदू दर्शन के मूल में ही सामाजिक और धार्मिक अनेकता छिपी हुई है। मनुष्य को पाप से मुक्त होने से रोकना मनुष्य को ईश्वर के नजदीक होने से रोकना है। इस तरह मनु ने मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व के विस्तार को रोका। उनके अनुसार ब्राह्मण का नामकरण संस्कार करते समय उसमें प्रसन्नता सूचक गुण हो, क्षत्रिय का नामकरण करते समय रक्षात्मक विवेक हो, वैश्य का धन धान्य संपन्नता सूचक और शूद्र के नामकरण दासत्व को बोध करने वाला हो। वेदों में भी जो वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई उसके अनुसार ब्राह्मण को वेद पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय को वेद पाठन को संरक्षण देना, वैश्य भी वेद पढ़ सकता है, द्विज को शूद्र की उपस्थिति में कभी वेद पाठ नहीं करना चाहिए, स्त्री को तो वेद पाठ से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं रखना चाहिए। वे गौतम को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि यदि शूद्र जानबूझकर वेद सुनने की गलती करता है तो उसके कानों में रांगा लावा डाल देना चाहिए। वेद पढ़ता है तो उसका कंठ काट लेना चाहिए। यदि उसने वेदों पर विद्वत्ता प्राप्त कर ली है तो उसके शरीर के टुकड़े कर देने चाहिए। इस तरह कात्यायन ऋषि के सूत्रों को उद्धृत कर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म समता का शत्रु है। उन्होंने विस्तार से विश्वामित्र और वशिष्ठ की जंग राजर्षि से ब्रह्मर्षि होने की कथा का उल्लेख किया है। विष्णु पुराण में राजा नीमि और ब्राह्मणों के संघर्ष के कथानक का उल्लेख किया है तथा जमदग्नि पुत्र परशुराम द्वारा क्षत्रियों के विरुद्ध किए गए संघर्षों का विशेष उल्लेख कर उन्होंने निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है कि यह सभी वर्ण संघर्षों का अंतहीन सिलसिला है। इस तरह हिंदुत्व न तो सामाजिक यथार्थ की कसौटी पर सही उतरता है और न तो व्यक्ति को निजी स्तर पर न्याय देने वाला है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण ही विश्व का जन्मदाता है, यह संहारक और शिक्षक है, इसीलिए उसे किसी भी मनुष्य को कटु वचन अथवा अपमानकारक बात नहीं कहनी चाहिए। शूद्र को चाहिए कि ब्राह्मण की सेवा करे। जो ब्राह्मण का सेवक होगा उसे ही दूसरे जन्म में भी अच्छी गति प्राप्त होगी। ब्राह्मण की सेवा शूद्र का सबसे सुंदर व्यवसाय है। इसके अतिरिक्त कोई व्यवसाय वह करेगा उसे इच्छित फल नहीं मिलेगा। यदि शूद्र धन संग्रह में सक्षम हो तो भी उसे नहीं करना चाहिए। जो शूद्र धन संग्रह कर लेता है वह ब्राह्मण को पीड़ित करता है। इन बातों से अंबेडकर की निश्चित राय बनी कि हिंदू धर्म दर्शन केवल उच्च वर्गीय नैतिक जीवन दर्शन है। उनके अनुसार नीतसे का धर्म दर्शन ही हिंदू धर्म की बराबरी कर सकता है। दर्शन रूप में ही यहाँ से भाईचारा का सिद्धांत समाप्त है। एक डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज कॉमा वॉल्यूम 3 कॉमा पृष्ठ संख्या 34 से 35 दो वही कॉमा पृष्ठ संख्या 48 से 49 3 वही कॉमा पृष्ठ संख्या 74।